हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। शिवांशा को पहली रसोई की रस्म के लिए आराध्या ने तैयार किया और उसे किचन में ले गई। नव्यांशी ने उसे खीर बनाने को कहा। उसने पहले ही वेद के हिसाब से खीर को अलग बाउल में सर्व करने को बताया था। चौहान फैमिली को यही लगता था कि शिवांशा और वेद की लव मैरिज हुई है, तो शिवांशा वेद के बारे में सब कुछ जानती होगी। उनकी बातों से अनजान शिवांशा ने वेद के लिए अलग से खीर तो परोसी, लेकिन उसमें कम ड्राई फ्रूट्स डाल दिए। उसके हिसाब से वेद की अलग खीर वही थी जिसमें कम ड्राई फ्रूट्स थे। इधर शिवांशा खीर लेकर डाइनिंग एरिया में पहुंची। उसे देखकर अक्षत और आराध्या ने हल्की सी स्माइल दी और फिर इशारे से वेद के सामने खीर का बाउल रखने को कहा। वेद को टाइप 2 डायबिटीज था और वो शुगर पूरी तरह इग्नोर करता था, क्योंकि चीनी उसके लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। जैसे ही वेद ने खीर का एक बाइट लिया, वो समझ गया कि उसमें चीनी डाली गई है। क्या ये इसने जानबूझकर किया गया है? वेद ने शिवांशा की तरफ देखकर मन ही मन कहा। एक चम्मच खाने पर ही वेद के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं और उसका हाथ हल्का-हल्का कांपने लगा। उसे अपनी आंखों के सामने सब कुछ हिलता हुआ नजर आने लगा और उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन सब की निगाहें वेद पर टिकी हुई थीं, जो बाहर से बेहद शांत था लेकिन अंदर ही अंदर काफी कुछ झेल रहा था। नव्यांशी ने वेद की हालत देखी तो वो जल्दी से उसके पास आई। उसने वेद के सामने रखे बोल को उठाया और फिर खीर का एक बाइट लिया। उसमें नॉर्मल से थोड़ी ज्यादा ही चीनी थी। जैसे ही उसे मिठास का एहसास हुआ, वो शिवांशा की तरफ पलटकर जोर से चिल्लाई, ये क्या किया तुमने? मेरे भाई को मारना चाहती हो? मैंने तुम्हें बताया था कि उनके लिए अलग से खीर बनानी है, फिर तुमने उन्हें ये चीनी वाली खीर क्यों दी? जैसे ही नव्यांशी ने चीनी वाली खीर का जिक्र किया, सब खड़े होकर वेद के पास आ गए। वहीं शिवांशा को समझ नहीं आया कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी जिसके लिए नव्यांशी उस पर इतने गुस्से से चिल्लाने लगी। उसने एक नज़र वेद की तरफ देखा जो लगातार पानी पी रहा था। इस बीच अक्षत दौड़कर गया और फर्स्ट एड बॉक्स के साथ नीचे आया। उसने ग्लूकोमीटर से वेद का ब्लड शुगर चेक किया जो बहुत हाई था। वंश ने जल्दी से दवाइयां लाकर दी। भाई भाई फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ, नव्यांशी ने कांपती आवाज में कहा और अपना मोबाइल निकाला। लेकिन वेद ने उसका हाथ पकड़कर नामे सिर हिला दिया। अपने माँ बाप को खोने के बाद वेद ही उन सब के लिए सब कुछ था। जो भी देवराज ने किया उसके बाद से उनके घर की सिक्योरिटी काफी हाई थी और वेद की डायबिटीज को लेकर सब ओवर प्रोटेक्टिव थे, हर चीज का ध्यान रखते थे। लेकिन आज ये गलती शिवांशा से हुई थी। मैं ठीक हो जाऊंगा, वेद ने बिल्कुल धीमी आवाज में कहा। लगभग 20 मिनट बाद जब अक्षत ने फिर से ब्लड शुगर चेक किया और वो थोड़ा कम हुआ तो सबने राहत की सांस ली। जब वेद को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, उसने नव्यांशी की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, मेरा खाना रानी के हाथ मेरे रूम में भिजवा देना और प्लीज चेक करके भिजवाना। सॉरी भाई, हमारी तरफ से लापरवाही हुई जो हमने गैर पर भरोसा किया, नव्यांशी ने जवाब दिया। बातों बातों में वो शिवांशा को ताना मार रही थी। शिवांशा कोने में खड़ी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मन ही मन कहा, मुझे सच में नहीं पता था कि इन्हें डायबिटीज है। अब ये यही सोचेंगे कि मैं उनकी जान लेने की कोशिश कर रही थी। मैं सपने में भी किसी के साथ बुरा करने के बारे में नहीं सोच सकती। कैसे समझाऊं सबको, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। नव्यांशी ने जिस तरह थोड़ी देर पहले उसे चिल्लाकर बात की थी, उससे साफ था कि ये उसके गुस्से का सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर था। वेद के जाने के बाद नव्यांशी खुद उनके कमरे में खाना लेकर पहुंची। वेद की हालत खराब देखकर उसकी जान निकल गई थी। कमरे में आते ही वो नम आंखों से वेद के गले लग गई। आप ठीक हो ना भाई, नव्यांशी ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वेद ने हाँ में सिर हिलाया और नव्यांशी से अलग होकर बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुमने खुद ग्लूकोमीटर में मेरा शुगर लेवल चेक किया था, अब परेशान होना बंद करो। नव्यांशी ने हाँ में सिर हिलाया, वो काफी कुछ कहना चाहती थी लेकिन वेद ने कहा, मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है, भूख लगी है तो बाद में बात करते हैं। नव्यांशी बिना कुछ बोले कमरे से बाहर चली गई। इधर नीचे एक अलग ही तमाशा शुरू हो गया था। जैसे ही वेद और नव्यांशी वहां से हटे, वंश गुस्से में शिवांशा के सामने आया। सच में उन्होंने तुमसे शादी की है ना? तुम किसी भी हिसाब से हमारे क्लास की नहीं लगती। हम फिर भी डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि भाई तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन तुमने उनकी जान लेने की कोशिश की। सच में प्यार करती हो या पैसों के चलते अपने से बड़ी उम्र के आदमी के साथ शादी कर ली? वंश गुस्से में शिवांशा पर चिल्लाते हुए बोला। शिवांशा की आंखों में आंसू थे। उसने जल्दी से ना में सिर हिलाकर घबराते हुए कहा, मुझे सच में नहीं पता था। मेरा यकीन कीजिए, मैं उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। इतने में नव्यांशी भी नीचे आ गई। शिवांशा की बात सुनकर वो उस पर चिल्लाकर बोली, अच्छा तो तुम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, और हम तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करें? थोड़ी देर पहले तुमने ही उन्हें जहर से भरा प्याला पकड़ाया था। जानती भी हो कि उनके लिए चीनी कितनी खतरनाक है। कैसा प्यार है तुम्हारा जो अपने पति के बारे में ये भी नहीं जानती कि कौन सी चीज उनके लिए फायदेमंद है और कौन सी जानलेवा? हम सब भाई के सामने कुछ बोल नहीं सकते, उनसे कुछ पूछकर उनका दिल नहीं दुखाना चाहते, लेकिन मुझे ये लड़की उनके लिए बिल्कुल भी परफेक्ट मैच नहीं लग रही। ऊपर से आज इसने जो हरकत की, अगर इसकी जगह कोई और होता तो आई स्वेयर मैं उसकी जान ले लेता। वंश ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा। नव्यांशी भी उसका साथ देते हुए बोली, प्रॉब्लम यही है ना कि भाई ने इससे शादी की है तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते। इतना कहकर उसने शिवांशा की तरफ देखा और सख्त आवाज में पूछा, अपनी फैमिली के बारे में बताओ, आखिर कहाँ से आई हो तुम और कौन हो जो अचानक चौहान खानदान की बहू बन गई? कहीं तुमने भाई को किसी चीज के लिए ब्लैकमेल तो नहीं किया? अगर ऐसा हुआ तो सच में मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। शिवांशा नजर झुकाकर खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसके पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। आराध्या उसके बचाव में आगे आना चाहती थी, लेकिन वंश के सामने वो कुछ नहीं कह सकती थी। आराध्या ने अक्षत की तरफ इशारा किया। अक्षत शिवांशा के पास आकर बोला, प्लीज रोना बंद कीजिए और आगे से ध्यान रखिएगा, जाइए अपने कमरे में। भले ही आराध्या के कहने पर अक्षत शिवांशा को फिलहाल प्रोटेक्ट कर रहा था, पर उसकी आवाज में सख्ती थी। वेद की तबीयत खराब देखकर आराध्या को भी शिवांशा पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन साथ ही जिस तरह वंश और नव्यांशी ने उसे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था, उसे उस पर दया भी आ रही थी। ये क्या कर रहे हो तुम? इसे प्रोटेक्ट कर रहे हो? पता है ना इसने थोड़ी देर पहले क्या किया? अगर इसे बचाने के लिए भाई ने वो पूरी खीर खा ली होती तो आज उनके साथ कुछ भी हो सकता था, ये मैं सोच भी नहीं सकती। नव्यांशी अक्षत पर गुस्सा करते हुए बोली। शिवांशा अभी भी वहां खड़ी थी। अक्षत और आराध्या जानते थे कि जितनी देर शिवांशा वहां रहेगी, वंश और नव्यांशी का गुस्सा उसी पर निकलेगा। अक्षत ने तेज आवाज में शिवांशा से कहा, मैंने कहा अपने कमरे में जाइए। शिवांशा साड़ी में ठीक से चल नहीं पा रही थी। वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों के पास गई और तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगी। शिवांशा के जाने के बाद नव्यांशी ने गुस्से में कहा, तुमसे बात करना ही बेकार है, भाई ने तुम्हें सिर पर चढ़ा रखा है। तुमसे तो कम ही सिर पर चढ़ाया है, अक्षत ने आंखें घुमाकर कहा। जो भी हो, तुम्हें उसे यहाँ से भेजना नहीं चाहिए था। यही टाइम था जब हम इस शादी का सच पता लगा सकते थे, वरना भाई से कुछ पूछेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा, वंश ने भी नाराजगी जताते हुए कहा।
अक्षत ने गहरी सांस छोड़ी और बोला, उससे ये सब अनजाने में हुआ है। हो सकता है भाई ने अपनी बीमारी के बारे में उसे पहले न बताया हो, या उन दोनों की मुलाकात रिसेंटली ही हुई हो। देखा नहीं वो किस तरह डर गई थी। अक्षत बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुझे शिवांशा भाभी की आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी, आराध्या ने धीमी आवाज में कहा। उसके भी शिवांशा के पक्ष में बोलने पर वंश गुस्सा हो गया। वो चिढ़कर बोला, ओ प्लीज आराध्या, अब इस लड़की को हमारी भाभी बुलाना बंद करो। पहले मेरे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट थी, लेकिन आज उसने जो किया उसके बाद मैं उस पर कभी यकीन नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी इस घर में धोखेबाज लोग छुप रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि सालों पहले जो माँ पापा के साथ हुआ वो भाई के साथ हो। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, ना ही हम में से कोई और। ये हमारे दिल की हालत नहीं समझेगी, आखिर ये भी उसी की तरह दूसरे घर से आई है, नव्यांशी ने ताना मारते हुए कहा और गुस्से में वहां से चली गई। वंश ने एक नज़र आराध्या की तरफ देखा और अपने कमरे में चला गया। नव्यांशी की बात सुनकर आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। अक्षत तुरंत उसके पास आया और उसे शांत करते हुए बोला, प्लीज मत रोइए, मैं नहीं चाहता कि मेरी पहली भाभी के बाद दूसरी भाभी भी रोना शुरू कर दे। ये दोनों हमेशा से गुस्से में दूसरों का दिल दुखाते हैं। पहले इन्होंने शिवांशा भाभी को रुला दिया, अब आपको। जो भी हो, लेकिन शिवांशा ने गलती तो की थी अक्षत, भाई की हालत देखकर मैं भी डर गई थी, लेकिन गलती अनजाने में भी हो सकती है ना। अब तक नव्यांशी और वंश अपना गुस्सा दबा कर बैठे थे। शिवांशा की इस हरकत के बाद वे खुलेआम उस पर अपना गुस्सा जाहिर करेंगे। आराध्या ने सुबकते हुए कहा, तो फिर हम किस लिए हैं? हम उन्हें बचाएंगे। अक्षत ने मुस्कुराकर कहा और आराध्या को भी स्माइल करने का इशारा किया। डाइनिंग टेबल पर माहौल खराब होने के बाद किसी ने खाना तक नहीं खाया, यहां तक कि शिवांशा की बनाई खीर भी बाहर फेंक दी गई। वहीं शिवांशा ऊपर पहुंची तो उसे वेद के कमरे में जाने से डर लग रहा था। वो जानती थी कि भले ही गलती अनजाने में हुई हो, लेकिन उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। जब वेद के भाई बहन उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे, तो वेद, जो उसकी सच्चाई जानता था, उसे यही लगेगा कि उसे वेद को मारने के लिए भेजा गया है। शिवांशा की खुशकिस्मती थी कि उस फ्लोर पर लोग ज्यादा नहीं आते थे। वो कमरे में जाने के बजाय दूसरी तरफ बनी बालकनी में चली गई और कोने में दुबक कर बैठ गई। उसे बहुत भूख लगी थी और उसने पिछले दो दिन से कुछ नहीं खाया था। रोते हुए शिवांशा ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। आसमान बिल्कुल काला था, ना तारे टिमटिमा रहे थे, ना चांद नजर आ रहा था, बस बादल छाए हुए थे। उसे ये काला आसमान अपनी जिंदगी की तरह लग रहा था, जहां अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। समझ नहीं आ रहा कि कौन सी जिंदगी अच्छी थी, वो जहां हर पल अपनी इज्जत जाने का खतरा रहता था, या ये जहां हर पल शक भरी नजरों से देखा जाता है। इससे अच्छा मैं मर ही जाती। अगर मुझे मारना है तो अभी मार दे, मुझे डर लग रहा है। मम्मी पापा, शिवांशा रोते हुए बोली और खुद को अपनी बाहों में समेटकर हग कर लिया। जब भी वो अकेला महसूस करती थी, वो ऐसे ही खुद को अपनी बाहों में समेट लेती थी। कोई उसका दर्द बांटने वाला नहीं था। शिवांशा ऐसे ही बैठी रही और कुछ देर में उसकी आंख लग गई। नींद में भी उसे मनन की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। जब भी वो ऐसे ही खुद को समेटकर सोती थी, मनन उसके पास आकर कहता था, शिवी, रोना बंद करो, मैंने कहा ना, मैं अब बड़ा हो रहा हूँ तो मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूंगा। उसकी मासूमियत देखकर शिवांशा मुस्कुरा देते थी। मनन, जिसे खुद प्रोटेक्शन और केयर की जरूरत थी, वो उसका ध्यान रखने की बात करता था। उसका मासूम दिल देखकर उसे बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन आज तो मनन भी उसके साथ नहीं था। वहीं वेद कमरे में अकेला कब से शिवांशा के आने का इंतजार कर रहा था। शिवांशा की हरकत ने उसे शक के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया था। वो यही जानना चाहता था कि क्या ये सब उसने जानबूझकर किया था। रात के लगभग 2 बजने को आए थे और शिवांशा अभी तक कमरे में नहीं आई थी। वेद को उसकी फिक्र सताने लगी। वो कमरे से बाहर निकला और शिवांशा को ढूंढने लगा। नीचे शिवांशा कहीं नहीं थी और बाकी लोग सोने जा चुके थे। वो वापस अपने फ्लोर पर पहुंचा तो घूमते हुए उसे बालकनी के गेट के पास शिवांशा की साड़ी का पल्लू दिखाई दिया। वो जल्दी से अंदर गया तो शिवांशा वहां खुद में सिमटी हुई सो रही थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के धब्बे बने हुए थे। उसका मासूम चेहरा देखकर वेद एक पल के लिए रुक गया। फिर उसे उठाने के लिए जैसे ही वेद ने उसे हाथ लगाया, हल्के से टच करते ही शिवांशा जल्दी से उठी और जोर से चिल्लाकर बोली, नहीं प्लीज हाथ मत लगाना। ये दूसरी बार था जब नींद में वेद ने शिवांशा को उठाने की कोशिश की और वो इसी तरह डर कर उठी। वेद हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था जबकि शिवांशा नींद से जागने के बाद जल्दी से खड़ी हो गई। वेद को अपने सामने देखकर उसे डर लग रहा था कि न जाने उसकी गलती की सजा वो उसे क्या देगा। अत्रभुज, क्या वेद की नफरत पर कभी शिवांशा की मासूमियत हावी हो पाएगी? क्या लगता है वेद का क्या रिएक्शन होगा? वो इन सब के लिए उसे जिम्मेदार ठहराएगा या सच का पता लगाने की कोशिश करेगा? पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा और प्लीज मेरे कैरेक्टर्स को गिफ्ट देकर उनकी रैंक इम्प्रूव कीजिए। फ्री गिफ्ट आपको रोज लाइब्रेरी से मिल जाएंगे।